भगवान अवतारा त्रिशदोत्पन्नलोकाः वीक्षरन्तु मनश्चक्रेयानुपाशतः। इस भगवान की मधुरतम रास क्रिया में लीला विशेष माधुर्यमयी है। ऐश्वर्य वीर्यादि षड्विध महाशक्ति के निकेतन श्री भगवान गोपियों के परम प्रेम में आत्महारा, आत्महाशब्द ये बंगला का बड़ा सुंदर है। आत्महारा माने अपने को खोकर, अपने को भूल कर और अपने समस्त सब प्रकार के ऐश्वर्य को भूल कर गोप रमणियों की वासना के अनुरूप लीला में प्रवृत्त हुए। भगवान यदि अपनी भगवत्ता की बात याद रखकर सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता आदि शब्दों का प्राकट्य करके लीला करते तो इस लीला में इतना माधुर्य नहीं रहता। तो वे स्वयं अपने सब प्रकार के ऐश्वर्य को भूल कर श्री गोपांगनाओं के प्रेमाधीन होकर लीला करने में प्रवृत्त हुए, इसीलिए ये लीला सर्वलीला मुकुटमणि कहलाई और सबके द्वारा समादृत हुई, प्रसिद्ध हुई। तो इस लीला में गोपियां अखिल ब्रह्मांड पति स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपने प्राणबल्लभ के रूप में माना और मधुर रसोचित विविध विहारों के द्वारा उनका आनंद वर्धन किया। और प्रेमादीन भगवान भी अपने ऐश्वर्य आदि की बात भूलकर गोपी जन बल्लभ रूप में ही लीला में अभिनय किया। अतएव इस लीला में गोपियों को श्री भगवान के स्वरूप और ऐश्वर्यादि के अनुसंधान की आवश्यकता नहीं हुई और भगवान भी अपने स्वरूप के अनुसंधान से रहित होकर के लीला करने लगे। तो यहाँ गोपी भी, गोपियों का प्रेम भी अपने आप को भुला देने वाला और भगवान का प्रेम भी, भगवान की प्रेमाधीनता भी अपने आप को भुला देने वाली। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि भगवान की शक्ति कहीं चली गई हो। तो भगवान इसमें अपने आप को खो देने वाले होकर भी लीला में जब जहां शक्ति के प्राकट्य का अवसर आया, आवश्यकता हुई, वहीं पर शक्ति ने प्रकट होकर के काम किया। तो इसीलिए कहीं पर असामंजस्य नहीं हुआ। श्री भगवान गोपियों को बुलाने के लिए जब बंशी नाद करने लगे तो वो बंशी नाद 84 कोस ब्रजमंडल में प्रतिनादित हुआ, परंतु वो कानों में गया केवल उन गोपांगनाओं के जिनको बुलाया गया था। ये महाशक्ति का काम, मैंने ये इसलिए दिखाते हैं कि ये इतना ही कह के रह जाते परंतु मनस्चक्र योगमान उपासित क्यों कहा। तो योगमान माने भगवान की निज शक्ति स्वयं महाशक्ति, उस शक्ति को प्रकट करके उन्होंने रंतु मनश्चक्र रमण की इच्छा की कि जिससे उस शक्ति का जितना काम जहां पर जो जो उसके लिए आयोजन आवश्यक वो सारे आयोजन उद्दीपनादि वन शोभारी, ये सब के सब उस शक्ति के द्वारा अपने आप बनते रहे भगवान की बेजानकारी नहीं, इसलिए शक्ति को प्रकट कर दिया। तो कहते हैं कि इसी प्रकार जब ये बंशी नाद से अपने आप को भूलकर श्री गोपांगनाए श्री कृष्ण के निकट जाने के लिए जब द्रुत गति से बड़ी तेजी से अपने अपने घरों से बाहर निकली, उस समय पति पिता भ्राता इत्यादि ने गतिरोध करने की चेष्टा की, परंतु महाशक्ति ने वहां भी काम किया। गोपियां उस ओर जरा भी न देखकर वंशी नाद का अनुसरण करके चली, किंतु किसी भी गोपी के पिता ने माता ने भाई पति ने उनके साथ जाने की कोई चेष्टा नहीं की। तो गया हो तो बताओ, रोका लेकिन गया कोई नहीं, किसी ने अनुसरण नहीं किया है उनका। तो वो सब के सब वापस लौट आए, प्रत्यावर्तन किया सब ने, और रास क्रीड़ा के संपादन में कहीं कोई आपत्ति नहीं आई। न तो वंशीनाद को दूसरों ने सुना कि आ करके उस बीच में रस भंग करके, और न गोपियों के चलने पर भी कोई उनके साथ वहां तक आया। तो श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण की जिस शक्ति के प्रभाव से श्री कृष्ण के संकल्प और अनुसंधान के बिना ही उनको बिना जनाए ही समस्त लीलाओं का सामंजस्य कर दिया, रास लीला में उस अचिंत महाशक्ति की बड़ी आवश्यकता थी। इसलिए रंतु मनस चक्र के साथ योग माया उपाश्रित कहना आवश्यक हुआ। योग माया जो है ये लीला ये शक्ति योग माया है जो भगवान की लीला संपादन के लिए विविध अघटन घटना करती रहती है। तो परम शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज ने ये योग माया उपाश्रित इस विशेषण के द्वारा भगवान की अघटन घटना पटीय श्री शक्ति रूपा योग माया का उल्लेख करके इस लीला में उनकी सामयिक प्रयोजनीयता आवश्यकता उपयोगिता का बखान किया। तो इस भगवान की इस परम मधुर लीला आरंभ का वक्तव्य शेष नहीं होता, ठीक ठीक कहा नहीं जाता यदि योग माया अनुकाशित भगवान मनुष्यक्रे ये चीज नहीं होती। तो इसकी पूर्णता योग माया उपाश्रित को लेकर के ही हुई है। तो ऐश्वर्य वीर्यादि षड्विध महाशक्ति निकेतन भगवान अपनी योग माया शक्ति का पूर्ण विकास करके तब रंतु मनश्चक्रे रमण की इच्छा उन्होंने की। यदि योग माया का प्रकाश न होता और गोपांगनाओं से रमण में प्रयत्न प्रवृत्त होते भगवान, तो दो चीज नहीं होती। श्री गोपांगनाएं अपने आप को खो नहीं सकती, क्योंकि उन्हें न खोने देने में जो कारण है वो सब उपस्थित हो जाते, और भगवान का वो रास क्रीड़ा रूप रमण भी माधुर्यमय नहीं होता, कहीं उसमें विशेष शक्ति का प्रयोजन करना पड़ता निर्वासन निष्कासन आदि के लिए। तो योग माया शक्ति के विकास हो जाने से गोपी प्रेम में अपने आप को भुला देने वाले भगवान के उस गोपी लीला रस की के समाधान के लिए जहां जब जो आवश्यकता हुई भगवान के बिना इच्छा के ही भगवान के द्वारा नियुक्त उस योग महाशक्ति ने वो काम अपने आप कर दिया तो सारा सामंजस्य हो गया, नहीं तो सामंजस्य हो जाता है लीला में। तो ये कहते हैं कि भाई ये आवश्यक है, जब जैसी लीला करनी पड़ती है उसके अनुसार व्यवस्थापक की व्यवस्था पहले करनी पड़ती, बिना व्यवस्थापक के काम चलता नहीं। तो ये योग माया ने इस काम को किया। भगवान भी यदि अपनी परम मधुर रास क्रीड़ा के महोत्सव में लगकर शक्ति को नहीं बुलाया होता तो एक आदमी जो व्यवस्था भी करे और रसा स्वादन भी करे दो काम हो नहीं सकते। घर का मालिक है वहां मालिकी का काम भी करता रहे, आने जाने वालों के द्वारा पूजा भी लेता रहे, उनके उनका समाधान भी करता रहे और कहां क्या हो रहा है कैसे क्या करना, भाई वहां चटाई बिछाओ, वहां सतरंजी बिछाओ, वहां आदमी रखो, पानी का गिलास लाओ, ये इस प्रकार करता रहे तो दोनों काम बिगड़ जाते हैं। तो फिर वो आयोजन व्यर्थ हो जाता है, जिनको बुलाया उनसे बात न कर सकें और बात करने में मन लगावे तो उधर व्यवस्था बिगड़ जाए। तो इसलिए इसमें अगर योग माया शक्ति का प्राकट्य नहीं होता तो गोपी प्रेम में आत्महारा अपने को खो देने वाले भगवान की ये लीला असंपूर्ण रह जाती। इसलिए भगवान ने योग माया उपासित माने योग माया को प्रकट किया। तो बोले ये योग माया आई कहां से, बोले आ तो गई थी लीला के साथ पहले। श्रीमद् भागवत में दशम स्कंध में जहां स्वयं भगवान के आविर्भाव की कथा का वर्णन है वहीं पर ये आता है कि दैत्य के भार से आक्रांत पृथ्वी के दुख से दुखित होकर जब ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पर गए, क्षीर सागर साई नारायण की जब उन्होंने स्तुति की तो क्षीर सागर साई भगवान ब्रह्मा भगवान ने ब्रह्मा को दैववाणी में कहा, विष्णु उर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभु नाम शेन कार्यार्थे संभविष्यति। इस बार मैंने स्वयं भगवान पृथ्वी पर अवतीर्ण होंगे, स्वयं भगवान तो उनकी जो परम ऐश्वर्यशालिनी माया जिसके प्रभाव से सारा जगत मोहित रहता है वो माया भी केवल ऊपर ऊपर से नहीं भाव से नहीं स्वयं अवतीर्ण होकर, जब स्वयं स्वामी अवतीर्ण हो रहे हैं स्वयं भगवान तो स्वयं भगवती माया ये स्वयं अवतीर्ण होकर के सब प्रकार की लीला का सामंजस्य करेगी, कहीं स्वयं जाकर कहीं अपनी प्रेरणा से कहीं अपने भाव से। और इसके बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी में आविर्भूत होने के पहले अपने अग्रज बलराम जी को देवकी के उधर से आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापन करने के समय बोले, भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजम भयम जदूनाम जनाथानाम योग मायाम समादिशत गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गो गोपी भिरलंकृतम। आज्ञा दी उन्होंने भगवान ने कि भाई अब तुम जाओ। तो भगवान ने जब ये जाना कि हमारे परम भक्त यादव कंस के द्वारा भांति भांति से उत्पीड़ित हो रहे हैं और वे अब शीघ्र ही पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर के स्वयं सबका दुख नाश करेंगे तो अपनी शक्ति योग माया को ब्रज में जाने का आदेश दिया। इससे भी ये बात सिद्ध होती है कि श्री कृष्ण के अवतीर्ण होने के प्रारंभ में ही योग माया शक्ति का कार्य आरंभ हो गया। उसके बाद परम मधुर लीला, में जहां जहां पर जैसा जैसा प्रयोजन हुआ उसी उसी प्रकार से योग माया शक्ति का कार्य प्रकट होता गया। श्री भगवान ने ब्रजलीला में वात्सल्य सख्य रसास्वादन के बाद जब परम प्रेमवती श्री गोपरमणियों के मधुर रसास्वादन का विचार किया, उसमें जब प्रवृत्त हुए तब योग माया शक्ति का पूर्ण विकास कर दिया। उपाश्रता माने प्रकाश, भगवान ने अपनी अचिंत महाशक्ति को इशारा किया जब पूर्ण रूप से प्रकट होकर के। अब इस लीला में पूरा पूरा सारा का सारा जहां जो आवश्यक है उसको तुम ठीक करो। तो भगवान ने अपनी रासलीला में सब प्रकार का अघटन संघटन कराने के लिए अचिंत महाशक्ति रूपा योग माया शक्ति को प्रकाश किया। तो यहां पर कई बातें मन में उदित हो जाती हैं, जो इस रहस्य में प्रवेश करते हैं उनके हृदय में भगवान नाना प्रकार की अर्थ की भावना उत्पन्न करते हैं। तो कहते हैं कि दो प्रकार की माया और योग माया का वर्णन मिलता है शास्त्रों में। यों तो अनेक भेद हैं पर दो प्रधान रूप से नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत और दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे प्रवद्यन्ते मायाम एताम तरन्तिते। इन दो गीता वचनों में योग माया और माया, इन दो मायाओं के नाम आते हैं और उन दोनों के कार्यों के परिचय में भी कुछ विभिन्नता दिखाई पड़ती है। तो योग माया का के परिचय में ये बात सामने आई कि श्री भगवान योग माया से समावृत हो जाते हैं इसलिए सब उन्हें नहीं जान पाते, किंतु माया का तो परिचय जानने में आता है। माया त्रिगुणमयी है और दुरत्यया है। योग माया के लिए नहीं कहा कि वो गुणमयी है या दुरत्यया है। एकमात्र भगवान के चरणों में जो शरणागत हैं वे ही उस त्रिगुणमयी दुरत्यया माया से उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो भागवत में भी इस प्रकार के शब्द आते हैं, अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायांच तदपाश्रयाम यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मन्ते नर्थात् तत्कृतं चाधिपद्यते। श्री वासुदेव पूर्ण पुरुष स्वयं भगवान और उनकी आश्रित माया का दर्शन करते हैं। जगत के जीवगण इस त्रिगुणात्मिका माया से अतीत होकर भी इस माया के प्रभाव से त्रिगुणात्मक देह ज्ञान अभिमान में बद्ध होते हैं और विविध प्रकार के दुख देने आदि को भोगते हैं। तो ब्रह्मा जी ने स्तुति में कहा, को वेत्ति भूमन भगवन परात्मन योगेश्वरोति भवतः त्रिलोक्यम्। सो जाते हैं वा कथम वा कति वा कदा वा विस्तारण क्रीड़ योग माया। हे अपरिच्छन्न हे श्रवे हे भगवन श्रे शौर्य शालीन हे परात्मन हे योगेश्वर, तीनों लोकों में किसी के लिए भी आपके लीला का तत्व जान पाना संभव नहीं, क्योंकि आप कब कहां किस प्रकार अपनी योग माया शक्ति का विस्तार करके क्रीड़ा खेल करते हैं ये किसी के भी ज्ञान गम्य होने की चीज नहीं। तो इस प्रकार नाना स्थानों में माया और योग माया का परिचय मिलता है पर परस्पर कुछ विभिन्नता उसमें पाई जाती है। इस विभिन्नता की ओर देखने से माया का कार्य होता है कृष्ण भजन विमुख जीवों पर असर करना और योग माया का काम होता है भगवान का कार्य समाधा करना। भगवान के कार्य को जो संपन्न करती है वो योग माया, चाहे उनको ढक के करे चाहे प्रकाश करके करे। और भगवान से विमुख जीवों को जो ढककर रखती है, जिनका ढक्कन बिना भगवान की शरणागति के नहीं दूर होता, वो भगवान की माया, योग माया और अपनी माया। तो इस प्रकार से ये माया के भेद हैं। तो ये कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत में भी श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत अनुसार माया और योग माया ये द्विविध नाम आते हैं। माया मुग्ध जीवीर ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, योग माया चित शक्ति विशुद्ध सत्व परिणति। ये वहां पर शब्द आते हैं कि माया मुग्ध जो जीव हैं उनको स्वयं श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं होता। गुरु चरणाश्रित भगवत चरणाश्रित होने पर, भगवान की कृपा से माया का अपसरण होने पर उन्हें ज्ञान होता, कृष्ण को पहचानते। और योग माया है ये भगवान की चित शक्ति है, ये विशुद्ध सत्व में परिणत होकर भगवान के साथ रहती है और भगवान का काम करती रहती है। तो इसलिए ये दो नाम, उनके दो भेद हैं। इसके बाद इनके संबंध में बहुत अधिक और विवेचन है। तो कहते हैं कि भगवान की लीला में देखा गया है कि हाँ, वो इत्थम विद तत्वायाम गोपिकायाम स ईश्वर वैष्णवी व्यथन उत्तमायाम पुत्र स्नेह मई लोहो माँ यशोदा को पति पुत्रादि के ममता पास से छूटने के लिए प्रार्थना करते हुए देखकर सर्वनियंता सर्वेश्वर श्री कृष्ण ने वैष्णवी माया का विस्तार किया और उससे यशोदा मैया का जो स्नेह था, पुत्र स्नेह, वो सौ सौ गुना और बढ़ गया। और वे पूर्व दृष्ट, वो मुंह में क्या क्या देखा सब बातों को भूल कर, और वो कहने लगी कि न मालूम ये क्या इसके मुंह में दिख गया, ये कहीं किसी असुर का काम तो नहीं। तो जल्दी से गोद में लेकर के उठाकर और स्तनपान कराने लगी कि मुंह में कुछ होगा तो ये स्तन के दूध से सारा का सारा चला जाएगा। तो माता को मोहित कर लिया। किस लिए मोहित किया? कि रसबंध न हो। तो भगवान की लीला से देखा जाता है कि उनके एकांत भक्त और निरंतर सेवा कार्य में लगी हुई यशोदा मैया भी उनकी वैष्णवी माया से मुग्ध हो जाती हैं। और ब्रह्म मोहन लीला में श्री कृष्ण जब अपने आप असंख्य गोप बालक और गोप सूप धारण करके गोष्ठ में क्रीड़ा कर रहे हैं, तब एक दिन श्री कृष्ण ही मानो द्वितीय मूर्ति बलराम बने हुए हैं। श्री कृष्ण ही थे भगवान की दूसरी मूर्ति श्री बलराम जी। शंकर शिव जी ने ये देखा कि ये ब्रजवासी गायें और ये ग्वाले, ये गोपियां श्री कृष्ण की उपेक्षा करके अपने अपने बछड़ों और बालकों के कोई से इतना प्यार क्यों करती हैं। नई चीज इन्होंने देखी। पहले तो ये था हमेशा कि ये गोप बालक जब घर आते श्री कृष्ण के साथ, तो उनकी माताएं उन अपने बच्चों की ओर तो देखती ही नहीं, वो तो बेचारे घर में जा करके कलेवा अलेवा मांगते कहीं तब मिलता उन्हें। और श्री कृष्ण के साथ सब के सब प्रेम करने लगती माताएं, और ये बछड़ों की ओर गायें नहीं देखती, बड़े बछड़े हो गए थे। तो अभी ये बलदेव जी ने देखा, ये बड़ा आश्चर्य कि श्री कृष्ण की ओर इतनी गायें नहीं देखती और माताएं नहीं देखती, और अपने बालकों को इस प्रकार से लालन पालन ये प्रेम प्रीत करने लगी, तो ये क्या कारण है? तो बलराम जी ने सोचा कि ये आश्चर्य की बात हो गई, क्योंकि ये ब्रज की गायें और ये ब्रज की गोपियां ये तो साधारण जीव है नहीं, ये तो बहिर्मुख जीव है नहीं। बहिर्मुख जीव यदि होते तो श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होता ही नहीं। ये सारी भगवान की लीला। अगर ये ब्रज के उस समय के जीव, यहाँ की गायें, यहाँ के गोप, यहाँ की गोपियां, यहाँ के पशु पक्षी, यहाँ की भूमि, ये यदि माइक होती और ये जीव यदि बहिर्मुख होते तो इनको भगवान का सानिध्य प्राप्त होता ही नहीं। और बहिर्मुख जीव ही भगवान को छोड़ के भोगों से अपने पति पुत्रों से प्रेम करते हैं। ये बहिर्मुखता का लक्षण है। जो अंतर्मुख है उनकी सारी प्रीति सारा प्रेम रहता है भगवत चरणों में समर्पित। और जो बहिर्मुख जीव है उनकी वृत्ति, उनकी प्रीति, उनका स्नेह, उनकी आसक्ति रहती है घर में, पुत्रों में, घर की चीजों में, सामान में, मकान में, जमीन में, और अपने जिनको संतान मानते हैं उनमें। तो ये बलदेव जी ने देखा कि ये बहिर्मुख जीव तो है नहीं, ये हैं तो भगवान के सारे सेवक। तो आज ये गायें और ये गोपांगनाएं अपने बालकों से, बछड़ों से प्रेम कैसे करने लगी? तो ये किसकी माया से मुग्ध है? ये बलदेव जीवन में आया कि किसकी माया से मुग्ध है? क्यों ये शंका आई कि श्री कृष्ण भक्त माया से मुग्ध होते नहीं? ये बहिर्मुख जीव तो माया से मुग्ध होते हैं, और भगवान के जो भक्त हैं उन पर यहाँ की माया चलती नहीं। अगर माया चल रही तो भक्त नहीं। ये बड़ी सुंदर यहाँ की चीज है। ये ब्रज के रहस्य को समझने के लिए देखना है कि जो यहाँ की माया से बद्ध हैं, जो यहाँ की माया के वशीभूत हैं, जो यहाँ के पदार्थों में, प्राणियों में आसक्ति प्रीत रखते हैं, वो माइक जीव कृष्ण भक्त ही नहीं। जो कृष्ण भक्त हैं वो इस माया से मुग्ध होते नहीं, इस माया से परे रहते हैं। क्यों? चैतन्य के उस जीवन में है कृष्ण सूर्य सम माया घोर अंधकार। जहां कृष्ण तहां ना ही माया अधिकार। श्री कृष्ण है ये तो मानो सूर्य है, और माया मानो घोर अंधकार है। तो जहां कृष्ण है वहां माया का अधिकार रहता नहीं। यदि माया का अधिकार है तो कृष्ण वहां है नहीं। तो जिस जिस जीव के मन में, जीवन में कृष्ण बस गए, उस जीव के जीवन में माया रहेगी नहीं। और तो माया नहीं रहेगी तो बहिर्मुख जीवों की भांति उसका इन माइक पदार्थों में प्रेम आसक्ति रहेगा नहीं। ये सिद्धांत है। तो यहां यदि माया मुग्ध जीवों की भांति इनमें जो ये मोह दिखता है आज, तो मालूम होता है किसी की माया से ये मुग्ध है। तो भाई ऐसी कौन से संसार में माया है जो भक्तों को मुग्ध करे? इनका कार्य तो माया मुग्ध की भांति हो रहा है। तो ऐसी कौन सी माया है जो भक्तों को मुग्ध करे? तो सोचा उन्होंने कि बस ध्यान में आ गई बात, ये सर्वेश्वरेश्वर श्री कृष्ण की अपनी माया से ही मुग्ध है, और उन्हीं की माया से मैं भी मुग्ध हूं। तो बस इसके बाद कुछ बोलने की बात नहीं। तो केम वा कुत आया था दैव वा नारी तासुरी प्रायो माया स्तुमे भरतुर नान्या मेति विमोहिनी। ये बलदेव जी के बात। भगवान की लीला पर विचार करने से देखा जाता है कि उनकी माया, उनके चरणों में एकांत शरणागत और निरंतर उनकी सेवा प्राण रहने वाले भक्तों में भी मोह पैदा कर देती है। तो ये स्वीकार करना पड़ता है कि भगवान की माया से उनके चरणाश्रित और चरण सेवन विमुख दोनों प्रकार के ही लोग माया मुग्ध तो होते हैं, मोहित होते हैं। तो माया के दो रूप हुए, उन्मुख मोहिनी और विमुख मोहिनी। जो भगवान के सन्मुख है उनको मोहित करने वाली, और जो भगवान से विमुख है उनको मोहित करने वाली।
तो बस माया का माया की दो वृत्तियां हुई, उन्मुख मोहिनी वृत्ति और विमुख मोहिनी वृत्ति। तो ये भगवान की दो प्रकार की माया है। तो ये दो प्रकार का भेद स्वीकार कर लेने पर सिद्ध हो जाती बात कि माया में ताम तरंति थे, माने प्रपद्यन थे, ये विमुख मोहिनी माया है।